गीता तत्व चिंतन 12वां अध्याय। स्वामी आत्मानंद। ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक सचिव थे। निर्गुण निराकार और सगुण साकार, उपासना में श्रेष्ठ कौन? गीता के 12वें अध्याय की भूमिका के विषय में विचार करते हुए हम पाते हैं कि अर्जुन भगवान से पूछता है। अर्जुन उवाच, एवं सतति युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाम। जो भक्त लोग इस प्रकार से सतत युक्त रहकर आपको भजते हैं और दूसरे जो केवल अक्षर निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं, उनमें से उत्तम योग वेत्ता कौन है? यहाँ सतत युक्त के साथ इस प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है? 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने भक्ति का सार तत्व व्यक्त किया था, उसी को प्रश्न बीज बनाकर यहाँ 12वें अध्याय में अर्जुन के यह प्रश्न पूछा है। इस प्रकार सतत युक्त होकर जो आपकी पर्युपासना करते हैं और दूसरे जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, इनमें उत्तम योग वेत्ता कौन है? यहाँ पर अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान। कुछ लोग साकार सगुण परमेश्वर की उपासना करते हैं और कुछ लोग निराकार निर्गुण परमेश्वर की उपासना करते हैं, और ये दोनों एक ही फल की प्राप्ति करते हैं, यह भी अर्जुन जानता है। और भगवान भी यही कहेंगे कि भक्ति या ज्ञान किसी भी रास्ते से चलकर आओ, मेरे पास ही पहुँचोगे। अर्जुन का प्रश्न यह है कि निर्गुण उपासना का रास्ता अधिक सुलभ है या सगुण उपासना का? और यहाँ पर अर्जुन ने जिस एवं शब्द का उपयोग किया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताए गए भक्त के लक्षणों के माध्यम से भक्त की साधना भी हमारे समक्ष प्रदर्शित हुई। जो भक्त हैं वह भक्ति की साधना कैसे करें, साधना के लक्षण क्या हैं? भगवान का उत्तर है कि शरीर इंद्रियों आदि के द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह उन्हीं के निमित्त हो। झाड़ू लगाने जैसे सामान्य कर्म के प्रति एक बुद्धि यह हो सकती है कि अपना घर साफ सुथरा रखने के लिए हम झाड़ू लगाते हैं, और दूसरी बुद्धि यह हो सकती है कि हमारे घर में पूजा स्थल है, मंदिर है, स्वयं भगवान जहाँ विचरण करते हैं उनके चरणों में कोई गंदगी न लगे, कोई कंकड़ न चुभे, इसके लिए हम घर को साफ रखते हैं। यही दूसरा भाव जब किसी कर्म के पीछे होता है तो उसमें परिवर्तन ला देता है। पहला भाव यदि कर्म के बंधन का कारण बनता है तो दूसरा भाव कर्म के बंधन को काटने का साधन बनता है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभ जाए तो दूसरे कांटे की सहायता से हम उस कांटे को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार कर्म के सहारे ही कर्म को काटना पड़ता है। कर्म में बांधने की शक्ति है और कर्म में ही काटने की भी शक्ति है, परंतु उस कर्म बंधन को छिन्न करने की शक्ति को प्रकट करना पड़ता है। उसकी वह छिपी हुई शक्ति मत कर्म कृत का भाव कर्म के पीछे रहने पर प्रकट होता है। कर्म के पीछे का भाव प्रमुख। स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य थे स्वामी आत्मानंद जी। वे अत्यंत सरल और निष्प्रिय थे। स्वामी विवेकानंद के शरीर शांत होने के बहुत बाद की बात है, आत्मानंद जी से लोगों ने पूछा कि वे अपने पहनने के कपड़ों का तो विशेष ख्याल नहीं रखते, फिर अपने बिस्तर की सफाई के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहने का कारण क्या है? आत्मानंद जी ने उन्हें बताया कि उनके गुरुदेव एक बार स्वप्न में उनके पास आए और उनके बिस्तर पर लेटकर उन्होंने उनसे अपने पैर सहलाने के लिए कहा। तभी से वे अपने बिस्तर की सफाई का विशेष ध्यान रखने लगे कि पता नहीं कब फिर उसी तरह उनके गुरुदेव उस बिस्तर पर लेटना चाहे। यह वैसा ही भाव है कि पता नहीं कब किधर से नंद नंदन घनश्याम आ जाए। प्रत्येक कर्म के पीछे का यही भाव परम फल का दायक होता है। माताएं भोजन बनाती हैं, उसके पीछे एक भाव अपने परिवार को तृप्त करने का तो रहता ही है, पर एक भाव यह भी रहता है कि पहले भगवान को अर्पित करके उनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए यह सारी रसोई है। कर्म के प्रति इतना सा यह जो दूसरा भाव आया, उससे कर्म में छिपी हुई उसकी असीम शक्ति प्रकट होने लगती है, और जो ही कर्म के भीतर की शक्ति प्रकट होने लगती है, वह अपने ही बंधनों को काटने लगती है। इसलिए भगवान ने कहा, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला बने। जीवन में जितने भी कर्म हैं, उन समस्त कर्मों का संबंध हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। यह गीता का तात्पर्य है और यही गीता की विशेषता है। जीवन में होने वाले समस्त कर्मों को भगवान के साथ कैसे युक्त करें, यही बताने के लिए गीता की शिक्षा है। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन को भक्त के लक्षण और भक्त बनने की साधना के विषय में समझाते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसके शरीर से जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सब के पीछे भाव यह है कि वे सब प्रभु के ही लिए हैं। यह भक्त और उसकी साधना का पहला लक्षण है, गुण या विशेषता है। फिर भगवान कहते हैं, मत परमो, मुझको ही परम माने, मुझे छोड़कर संसार में अन्य किसी को न जानता हो। परमात्मा को ही परम मानकर जो संसार में सारी क्रियाएं करता है, अपने प्रभु के अलावा वह किसी और को रिझाना नहीं चाहता, ऐसा जो भक्त होता है वह कुटिल नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। वह यह निश्चित जानता है कि प्रभु मन के भाव को पकड़ लेते हैं, उनके सामने किसी प्रकार की कुटिलता नहीं चल सकती, उन्हें कभी ठगा नहीं जा सकता। इसीलिए भक्त जो भी कार्य करता है, वह प्रभु के लिए ही करता है। अब यदि किसी भी क्षण हमारे भगवान यहाँ पधार सकते हैं, यह सोचकर हम अपने कमरे को साफ करते हैं, तो सोच लीजिए कितने सुंदर ढंग से हम कमरे की सफाई करेंगे। अपने परम प्रिय परम श्रद्धेय को मन में रखकर किए जाने वाले कर्मों में इसी तरह का सौष्ठव रहता है। भगवान आगे कहते हैं, मत भक्तः, वह मेरा ही भक्त हो, मेरा ही भजन करे। भजन करने से तात्पर्य है उसमें रुचि का होना, मन का जाकर उनमें घुस जाना। श्रद्धा इससे भिन्न एक भावना है। कोई किसी का श्रद्धा पात्र हो तो उसके अत्यंत आंतरिक प्रेम का भी पात्र हो, यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं, परम श्रद्धा भी मुझ पर ही करो और अपने हृदय का सारा प्रेम भी मुझ पर ही उड़ेल दो। भक्त की साधना का यह एक सोपान है और इसी प्रकार धीरे धीरे हम इस दिशा में अग्रसर होते हैं। संसारासक्ति राग और द्वेष का मूल। इस प्रकार मत कर्म कृत, मत परमो और मत भक्तः, ये तीन भगवान के साथ हमको जोड़ने वाले विशेषण बताए। मान लीजिए ईश्वर के साथ हमने अपने समस्त कर्मों को जोड़ दिया, अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उन्हीं को दे दी और अपना सारा प्रेम भी उन्हीं के चरणों में उड़ेल दिया, तो अब संसार के साथ क्या करें? तो कहते हैं, संग वर्जितः, जो आसक्ति संसार के पदार्थों में रहती है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब तक सांसारिक पदार्थों में तुम्हारी आसक्ति बनी रहेगी, तब तक तुम्हारा मन वही उलझा रहेगा। तब भला तुम मुझ में कैसे आसक्त हो सकोगे? मन एक साथ दो जगह पूरी तरह से आसक्त हो नहीं सकता। कोई ऐसा समझे कि संसार को और ईश्वर को एक साथ प्यार करता है, तो उसके प्यार में तीव्र एकाग्रता या समूचा ध्यान नहीं है। और भगवान तो ऐसे लीला नट हैं कि वे अपने लिए भक्त का समूचा प्यार चाहते हैं, पूरा हृदय चाहते हैं। इस बात से वे कभी समझौता नहीं कर सकते कि उनका भक्त उनके अलावा किसी और को भी अपना प्रेम दे। इसीलिए कहते हैं, संग वर्जितः, संसार में जो आसक्ति के केंद्र हैं, उनसे अपने मन को हटाए। निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी के भी प्रति वैर का भाव न रखे। वैर शब्द बड़ा लाक्षणिक है। हम बेर बद्रिका नामक जो फल खाते हैं, उसके वृक्ष की लकड़ी को जलाने से जो ताप होता है, वह बहुत तेज होता है। इसीलिए शीत प्रधान प्रदेश में बेर की लकड़ी जमा लेते हैं। उसी तरह के भीतर यदि वैर की अग्नि जला ली जाए तो हृदय को भी भस्म कर दे। ईर्ष्या द्वेष मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसीलिए कहा, जो निर्भय भी हो वह भक्त मुझको प्राप्त करता है। भगवान की इन्हीं बातों को पकड़कर अर्जुन ने 12वें अध्याय के प्रारंभ में अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। भक्ति शास्त्र में 12 की संख्या बहुत महत्व रखती है। एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसको हरिवासर या भगवान का दिन कहते हैं। एकादशी का व्रत जो रखा जाता है वह भी इस द्वादशी की प्रधानता से ही। भागवत में द्वादश स्कंध है, भगवान के नाम का द्वादशाक्षर मंत्र है। नारायण के जिन आदित्य रूपों की कल्पना की गई है वे भी संख्या में द्वादश हैं। इन 12 आदित्यों में भी 12वें आदित्य का भगवान वामन के रूप में अवतार हुआ। गीता में भक्ति योग नाम का यह अध्याय भी 12वां है। सरल हृदय से अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। भगवान के ज्ञान को चुनौती देना उसका उद्देश्य नहीं है। कोरे सिद्धांत के लिए उसका यह प्रश्न नहीं है। व्यवहार में उसे जो कठिनाई लगती है उसको हल करने के लिए उसका यह प्रश्न है। भक्त कौन है? अर्जुन का प्रश्न है कि भक्त के ये 5 गुण की वह भगवान के लिए ही कर्म करने वाला हो, भगवान ही उसके लिए सबसे परम हो, भगवान का ही वह भक्त हो, संसार के विषयों के प्रति उसकी आसक्ति न हो और सभी भूतों में निर्वैर भाव का जो पोषण करे, उन सबको जिसने अपने जीवन में उतार लिया है और इन गुणों से जो सतत युक्त है, वह जो आपका सतत चिंतन करता है और सब जगह आपके समीप रहता है, ऐसा जो साकार सगुणोपासक भक्त और निराकार निर्गुणोपासक भक्त में से कौन योग वित्तम है। भक्त शब्द का अर्थ समझ लो, भज सेवायाम। जब प्रेम पूर्वक किसी के नाम का गान किया जाता है तब चित्त की वृत्तियां जो अभी विषयाकार है वे गल जाती हैं। वही वृत्तियां हरि के सांचे में ढलकर हरिमय हो जाती है, भगवदाकार हो जाती है। यह भक्ति का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ भक्ति का है भंजनो आमर्दने, जिसके द्वारा भाग कर दिया जाए, विभाग कर दिया जाए, वह भक्ति है जो बता देती है कि यह है संसार और यह है परमात्मा। संसार के विभाग को छोड़ दो और परमात्मा के विभाग में चले जाओ, जीवन में भगवान प्रमुख बन जाए, यह भक्त की उपासना है। भक्त के ये सब गुण गिनाकर भगवान से अर्जुन कहते हैं, ये भक्त ऐसे ही हैं भगवान। इसी प्रकार से भक्ति कहते हैं, परंतु दूसरे भक्त वे हैं जो अक्षर, जो कभी क्षरित नहीं होता, जो अव्यक्त है, जो कभी व्यक्त नहीं होता, मन जिसको पकड़ नहीं पाता, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर पाती, ऐसे निराकार निर्गुण सतत व्यापक तत्व की जो उपासना करते हैं, जो विराट में, जो चतुर्भुज रूप में, जो मानुषी रूप में सब में विधा हुआ है, जो सभी रूपों का अधिष्ठान है, जिस निर्गुण निराकार के ऊपर यह विराट वृक्ष मानो टिका हुआ है, जो अरूप रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में योग को जानने वालों में किसका रास्ता श्रेष्ठ है? सतत युक्त होने का अर्थ है कि उनके लिए किसी भी प्रकार का काल का बंधन नहीं है। हर समय वे भगवान से जुड़े हैं और हर समय हर स्थान पर वे उनकी उपासना करते हैं। जो भक्त इस प्रकार भगवान से युक्त हैं, भगवान का स्मरण करता है और भगवान के निकट बना रहता है, दूसरे प्रकार का भक्त वह है जो निराकार की उपासना करता है, अपने चित्त को निराकार ब्रह्म में लगाता है, वह रूप से अपनी वृत्तियों को हटाकर अरूप में अपने ध्यान को केंद्रित करता है और इस विधि से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है। ऐसे जो दो प्रकार के योगी हैं, योग को जानने वाले हैं, उनमें श्रेष्ठतर योगी कौन है? तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार से भगवान का सगुण स्वरूप साकार ब्रह्म का भजन करते हैं और दूसरे वे जो निर्गुण अरूप निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, साधना के इन दो मार्गों में से अधिक अच्छा रास्ता कौन सा है?